मिल जाए मन में समाना। अगर मिल जाए तो मन में समा लेना, जब समय मिले मुस्कुरा देना। जब भी समय मिले मुस्कुरा देना, चाहे जितनी बार तुम खुश रहो ना यार, तुम्हारे सामने है खुशियां हजार, तुम खुश रहो ना यार। डॉक्टर गिरीश भाई,
आज से 113 साल पहले हुई यह सत्य घटना है। मिस्टर निंजर एक आर्टिस्ट थे और आसपास के इलाके में लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे, सम्मान भी देते थे। एक दिन वह सब्जी की दुकान में सब्जी खरीदने के लिए गए और अलग अलग सब्जियां खरीद करके उन्होंने उसे $20 दे दिए। और जब दुकानदार जो पैसे लौटाने थे वह पैसे लौटाने लगा तो उसकी उंगलियों में उस $20 से कलर निकल आया। तो पहले तो उसे डाउट नहीं हुआ क्योंकि मिस्टर निंजर बहुत ही फेमस थे, परंतु फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि यह जाली नोट भी है, इससे कलर कैसे निकला। जब पुलिस को बुलाया गया तो दो पुलिस के बीच में भी मतभेद हो गया। एक ने कहा कि यह सच्ची नोट है, दूसरे ने कहा कि हो सकता है यह जाली नोट भी है। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो मिस्टर निंजर सचमुच ही जाली नोट हाथों से बनाते हुए पकड़ा गया। वह हाथ से ही जैसे आर्टिस्ट चित्र बनाता है ऐसे $20 बना देता था। और जब वह पकड़ा गया तब उसके कमरे से दूसरे भी तीन चित्र जो उसने पोर्ट्रेट बनाए थे वह भी बरामद हुए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये तीनों पोर्ट्रेट $500 में बिके। इस कहानी का और भी आश्चर्यजनक पहलू है कि मिस्टर निंजर को पोर्ट्रेट बनाने में जितना समय लगता था उतना ही समय $20 बनाने में भी लगता था। तो प्रश्न होता है कि क्यों ना वो पोर्ट्रेट बना करके $500 में बेचता था, क्यों ऐसा बुरा धंधा करता था, क्यों करता था? आदत से मजबूर। अच्छा, और हाँ जी, हैबिट थी और कुछ? हाँ जी, एक सेकंड पीछे बता रहे क्या? अच्छा हाँ, और या तो कहे कि भी पोर्ट्रेट बना करके बेचने में जो मेहनत करनी पड़ती थी वो उससे नहीं होती थी। $20 बना के किसी को दे देना वो बड़ा सरल काम था। और कुछ? ये टॉपिक से क्या संबंध हो सकता है? हाँ सीमा बेन, आज का जो टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रेस, नो योर स्ट्रेसर्स। हाँ कोई, इसको आसान लगता था। अच्छा, उसने कभी यह नहीं सोचा था कि इस, हाँ जी बोलिए क्या? हाँ हाँ, पार्डन, नहीं। अच्छा नहीं, लेकिन अगर उसकी कॉन्शियस बाइट होती थी तो वो नहीं करता, वो पोर्ट्रेट बनाता, मेहनत करता।
खुद के विचार नहीं आया कि मेरे पोर्ट्रेट इतने
अच्छे हो सकते। अच्छा, ये भी पॉसिबल है। या तो कहे कि उसे पता नहीं था कि अगर कभी पकड़ा जाएगा तो कितनी बड़ी स्ट्रेस होगी, कितनी बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो सकती है, उसका भी उसने कभी विचार नहीं किया था। तो आज इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, नहीं समझ में? अच्छा, स्टोरी समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा नहीं, मैसेज के बदले तो ये सही सत्य कहानी है और इस कहानी को इस बात के साथ लिंक किया है मैंने कि झूठ बोलना या इस प्रकार से गलत काम करना इट्स अ बिग स्ट्रेसर कि जिसको लोग समझते नहीं। तो इसके कारण इस बात को उसके साथ हमने लिंक करने की कोशिश की। अगर आप कहानी समझ गए हो तो भी ठीक है, इस कहानी को कई टॉपिक्स में आप जोड़ सकते हैं, आवश्यकता नहीं है कि यहीं पर इस कहानी को जोड़ा जाए। These are all different interpretation, हम लोगों को थोड़े लोगों को पूछे एंड देन अल्टीमेटली वी कम टू दैट पार्ट. एक आइस ब्रेकिंग करेंगे. आपको ऑलरेडी बताया है आइस ब्रेकिंग क्या होता है. तो इसमें जिन्हों को पहले आपने अगर इस पहेली को फेस नहीं किया है, जिन्होंने फेस किया है वो उत्तर नहीं देना, जो पहली बार इसको देख रहे वही उत्तर देना. अब आपको गिनती करनी है कि इसमें कितने स्क्वायर है इस फिगर में, कितने गिनती करिए. अभी बोलिए नहीं, प्लीज डोंट से एनीथिंग, आराम से गिनती करिए. एक मिनट देता हूं. एक मिनट नहीं बोलिए, बोलता हूं तो बोलते हैं. अच्छा हो गया. हाँ तो कौन कौन कहते 16 है, हाथ उठाओ. 16 कौन कहते. अच्छा थोड़े ही लोग है, 16 थोड़े ही है. अच्छा 20, 16 से 20 के बीच में, 16 से 20 के बीच में कौन कौन कह रहे हैं. अच्छा हाँ. अच्छा तो 21 से 24 के बीच में, ठीक है हाँ. और 25 से 30 के बीच में, हाँ आपको आ रहा है 30 तक, 30 गिनती कर सकेंगे. 25 गिनती कर रहा. अच्छा 25 से ज्यादा कौन कर रहा है. 26 या मोर देन 26 कौन कर रहा है. मोर देन 26. अच्छा अभी तो समय कम है, अगर कभी हमारे पास समय हो तो पार्टिसिपेंट्स को बुलाइए गिनती करने के लिए. परंतु वास्तव में इसमें 30 स्क्वायर है. किस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे इसमें 30 स्क्वायर्स है. तो पहले तो 16 हो गए, फिर ये 20 हुए दूसरे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. तो हम परिस्थिति को बस और कोई एंगल से नहीं देखते, और एंगल से नहीं देखते इसके कारण वास्तव में स्ट्रेस भी निर्माण होती है. इस टॉपिक को भी जिस प्रकार से हम डेवलप करेंगे वह आज तक जो आम तौर पर बातें मानते आए हैं उससे भिन्न रूप से हम टॉपिक को डेवलप करना चाहते हैं. साथ साथ इस टॉपिक से अधिक फायदा हो इसलिए हम एक्सरसाइज करेंगे. आप भी ये करवा सकते हैं. वास्तव में हर सेशन की शुरुआत में अगर आपको एक डेढ़ घंटा मिलता है तो ऐसी हम प्रैक्टिस करा सकते हैं कि जिसमें पहले तो उन्हें आराम से बिठा करके कहते हैं कि आप इस पॉइंट को देखते रहे. यह कहने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा का सिंबल है कोई बात, बस आप आराम से बैठिए और इस पॉइंट को देखते रहिए. फिर थोड़ा मैं आपको रिलैक्स करने के विचार दूंगा और उसके पश्चात कैसे वो एकाग्रता से इस विषय को सुने, पूरा ध्यान इस टॉपिक में दे, इसके विषय में उनको कुछ पॉजिटिव विचार देते हैं. तो आइए हम भी ये प्रैक्टिस करेंगे. आराम से कमर को सीधी रख करके बैठिए और बिल्कुल एकाग्रता से कंटिन्यूअसली ऊपर में जो पॉइंट है उस पॉइंट को ही देखते रहिए. आपका सारा शरीर एकदम हल्का हो रहा है, आपका सारा शरीर रिलैक्स हो रहा है और आप कंटिन्यूअसली इस पॉइंट को ही देखते रहिए. आराम से सभी अंग रिलैक्स हो रहे हैं और आराम से आप इस पॉइंट को देख रहे हैं. धीरे धीरे मन भी शांत होने लगा है. रिलैक्स. तनाव क्या है और तनाव के मूल कारण क्या है उसे जानने की आप में एक तीव्र इच्छा निर्माण हो रही है. इसी कारण इस विषय में आप पूरा पूरा ध्यान देंगे. जो भी बातें बताई जाएगी पूरा ध्यान इसी विषय पर देंगे. नई बातों को समझने में, उसे स्मृति में रखने में ध्यान देंगे. अगर बीच में और कोई विचार आए तो भी तुरंत वापस इसी चर्चा में मन को लगा देंगे ताकि इस विषय से आपको अधिक से अधिक फायदा हो, इस मानसिक भूमिका को सदैव कायम रखते हुए ही आप पूरी चर्चा में अपनी रुचि लेंगे। इस प्रकार मन को तैयार करते हुए प्रोफेसर हैंसेल की, जिन्हें तनाव के विषय में अनुसंधान करने के भीष्म पितामह माना गया है, वो मुकेश खन्ना नहीं, जब हैंसेल सेकेंड एमबीबीएस में पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, और पहली बार जब उन्हें पेशेंट्स को देखा तो तब उनके प्रोफेसर ने, प्रोफेसर वॉन जैक्स की, जिन्होंने 5 पेशेंटों को अलग अलग डिपार्टमेंट से बुलाया कि उन सभी को अलग अलग बीमारियां थी, कोई भी एक जैसी बीमारी नहीं थी, फिर भी सिर्फ उन मरीजों को देख करके, उन्हें कुछ प्रश्न पूछकर ही यह प्रोफेसर वह सही डायग्नोसिस कर सके कि इन्हें क्या बीमारी है। तो यह देख करके नौजवान हैंसेल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है कि भी अलग अलग पेशेंट है, फिर भी इनमें कुछ ऐसी बात जरूर है जिसके कारण प्रोफेसर इसको डायग्नोस कर सके। तो तुरंत वह अपने फिजियोलॉजी के प्रोफेसर के पास गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर, मैं रिसर्च करना चाहता हूं, कॉलेज अवर्स के बाद आप मुझे छुट्टी दीजिए कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूं कि जो सभी पेशेंट होते हैं उनमें सामान्य बात क्या है, भले बीमारियां अलग अलग है परंतु जरूर कोई सामान्य बात है। तो जब यह बात उनके प्रोफेसर ने सुनी तो वह हंसने लगे, वो कहते तुम मूर्ख हो, ये भी कोई रिसर्च होती है कि भाई मोटा व्यक्ति है वो मोटा दिखाई देगा, बीमार है वो बीमार दिखाई देगा, उसमें क्या बात है। परंतु हैंसेल को उससे कन्विक्शन नहीं हुआ, उनको बहुत जिज्ञासा थी कि इस विषय में मुझे अनुसंधान करना है। तो जब वह डॉक्टर बन गए और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, तब उन्होंने पहली रिसर्च शुरू की जिसमें प्राणियों में कई टॉक्सिक केमिकल्स थे, वो टॉक्सिक केमिकल्स उनमें इंजेक्ट किए चूहों पर, बंदरों पर, और जब ये टॉक्सिक केमिकल्स उनमें इंजेक्ट किए तो उन्होंने पाया कि सब में 3 चीजें कॉमन दिखाई देती, भले वो केमिकल्स अलग अलग हो परंतु ये 3 बातें सब में होती है। एक तो जिसकी चर्चा हम बार बार भी कर रहे हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जो कॉर्टिसोल निर्माण करती है, वह बढ़ गई, उसका जो सिक्रीशन था वह बहुत बढ़ने लगा। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी लिम्फ नोड्स है, छोटी छोटी लिम्फ नोड्स है कि जो जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है ऐसे लिम्फ का भी सर्कुलेशन होता है, तो वह जो लिम्फ नोड्स थी वह छोटी हो गई, वह श्रिंक हो गई। और तीसरा कि उनके पेट में अल्सर हो गए, और इससे उन्होंने और इंटरेस्ट लिया और फिर यह देखा कि न केवल ये जहरीले पदार्थ परंतु जब और प्रकार का भी तनाव आता है, यहां तक कि आगे चलकर यह सिद्ध हुआ कि मानव में भी जब उन्हें टेंशन होता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और कोई टेंशन वाली परिस्थितियां आती है, तब भी इस प्रकार के ही विभिन्न परिवर्तन देखे जाते हैं। कि अनुसंधान के बाद आगे चल के यह नाम पड़ा जनरल एडप्टेशन सिंड्रोम, जिसे GAS के नाम से भी जानते हैं। और इन सभी के साथ अब तनाव की डेफिनेशन, हैंसेल ने मेडिकल डेफिनेशन दी है, शायद आप उसको पूरा नहीं समझ पाएंगे, हम सरल डेफिनेशन भी देखेंगे, परंतु हैंसेल ने जो सबसे पहले डेफिनेशन दी है जिसमें कहा कि स्ट्रेस इज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द एक्सेसिव डिमांड्स मेड अपॉन इट, कि जब शरीर पर कोई भी बात से, वो बाहरी कारण हो या आंतरिक कारण, जब एक्सेसिव प्रेशर आता है, डिमांड्स आती है कि जिसका हम सामना नहीं कर सकते हैं, तो तब जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, अर्थात कि तनाव भल अलग अलग हो परंतु ये जो रिस्पॉन्स है वह एक जैसा है, हा? नहीं नहीं, लेकिन स्पेसिफिक मतलब कि सपोज कि एक्सेसिव हीट हो गई तो ऐसा प्रेशर आएगा, ज्यादा ठंडी हो गई तो अलग आएगा, तो उसको स्पेसिफिक कहेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट होता हो, किसको गुस्सा आया तो डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा, दूसरा कोई स्ट्रेस हो तो डिफरेंट उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सेम है, नॉन स्पेसिफिक, कि स्ट्रेस डिफरेंट, सिचुएशन डिफरेंट हो बट रिस्पॉन्स इज सेम, तो इसलिए उन्होंने कहा नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये तीन बातें जो मैंने आपको आगे बताई उसके आधार से उसे स्ट्रेस कहा, परंतु ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आम व्यक्ति कैसे समझे कि अभी मैं स्ट्रेस में हूं? हम यह सब चेकिंग तो नहीं कर सकते हैं कि लिम्फ नोड श्रिंक हुई या नहीं हुई, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा, परंतु हमें और एक सिंपल डेफिनेशन भी देखनी चाहिए जिसके कारण हम स्वयं आइडेंटिफाई कर पाए कि जब मुझे थोड़ा सा भी टेंशन हो तो पता चल जाए। और यह क्यों जरूरी है? क्योंकि तनाव वह छुपे रुस्तम जैसा है, वह चुपचाप हमें पता भी नहीं चले अंदर डैमेज करता रहता है, तो इसके कारण तनाव को जानना बहुत ही आवश्यक है। जो दूसरी सिंपल डेफिनेशन है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द सिचुएशन या तो डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी। अगर डिमांड जो सिचुएशन निर्माण करता है कि भाई थोड़ी गर्मी है तो हो सकता है हमें स्ट्रेस न, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए कि जिसे प्रोटेक्ट करने के हमारे पास साधन नहीं है तो उसका भी तनाव हो सकता है। और कोपिंग एबिलिटी, क्योंकि अगर हमारी कोपिंग एबिलिटी जो मॉर्निंग में भी देखा था वो कोपिंग एबिलिटी ज्यादा है तो स्ट्रेस नहीं होगी, जिनकी वह क्षमता फेस करने की कम है उनको स्ट्रेस हो जाएगी। और नीचे का डायग्राम जो भी हमने मॉर्निंग में देखा था कि किस प्रकार से एक तो होता है कोपिंग एबिलिटी और दूसरा है डिमांड, जब डिमांड है वो कोपिंग एबिलिटी से ज्यादा हो जाती है आखिरी में हम देख रहे हैं तो वहां पर स्ट्रेस होता है। अगर कोपिंग एबिलिटी से डिमांड कम है तो स्ट्रेस नहीं होगी। यह भी अगर हम थोड़ा सा सोचे तो हर परिस्थिति में समझ सकते हैं कि हमें तनाव हो रहा है या नहीं। इससे भी और एक हम सिंपल डेफिनेशन देखेंगे कि शायद वो टेक्निकल नहीं है परंतु फिर भी आम व्यक्ति को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है या नहीं। तनाव किसको कहेंगे? स्ट्रेस इज एनी एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी। कि इसमें अगर आप गहराई से ध्यान दें तो तनाव सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है परंतु इंटरनल भी है, क्योंकि जब हमें ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या का भी बुरा प्रभाव मन पर पड़ता है। जब हम नाराज हो जाते कोई बात में तो उसका भी मन और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो यह भी वास्तव में स्ट्रेस है। साथ साथ और आप गहराई से देखेंगे तो इसमें यह नहीं लिखा है कि तनाव सिर्फ नेगेटिव बातें हैं, कि हानिकारक परिस्थितियां वही सिर्फ तनाव नहीं है, परंतु बहुत ज्यादा खुशी होना भी टेंशन है। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच हुई जिसमें आखिरी बॉल में भारत जीत गया, तो पता है क्या हुआ? दूसरे दिन न्यूज़पेपर में समाचार आए कि दो लोगों को हार्ट अटैक आया, एक को आसाम में हार्ट अटैक आया और दूसरे को सौराष्ट्र में हार्ट अटैक आया। तो बहुत खुशी भी स्ट्रेस है, और जब भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है बहुत खुशी की, उसको भी मैनेज करना सीखना चाहिए, उसमें भी स्वस्थ रहना शांत रहना हमें सीखना चाहिए, नहीं तो वह भी मन और शरीर पर बुरा प्रभाव डाल। अब इसके आधार से आप स्वयं सोचिए कि कब कब आपको स्ट्रेस होता है। आज तो मैं आपको ये प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं क्योंकि समय कम है। आप जब ये सेशन ले तो अभी यहां पर उनको दो एक मिनट का टाइम दीजिए और फिर से शांति से बैठ करके कहिए कि आप सोचिए कि पिछले 3 मास में कब कब आपके सामने ऐसी बात हुई, छोटी सी भी या थोड़ा भी मन और शरीर पर बुरा प्रभाव हुआ। उनको सोचने दीजिए और फिर पार्टिसिपेंट्स को पूछिए भी कि क्या परिस्थिति हुई, आपको हुआ। 2-4 अलग अलग लोगों को पूछिए कि कब कब आपको तनाव हुआ, तो उससे भी वह आपके साथ साथ सोचने भी लगेंगे। एक बार जब हमने यह डेफिनेशन बता दी, फिर हैंसेल ने ही इसकी स्टेजेस भी बताई है कि जब जब भी तनाव होता है तो उसकी, उन्होंने कहा है कि 3 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज है जिसे कहते अलार्म, कि जैसे अलार्म की घंटी बजती है और हम जाग जाते हैं, ऐसे ही जब भी स्ट्रेस होता है तो तब अलार्म होता है। और अधिकतर हम कोई कदम नहीं उठाते। अच्छा तो यह है कि इस डेफिनेशन के आधार से जब जब भी वो अलार्म का सिग्नल मिले, थोड़ा भी स्ट्रेस हो, इमीडिएटली हम कुछ कदम उठाएं ताकि तनाव है वह कम हो जाए। परंतु जब हम कदम नहीं उठाते हैं तो थोड़े समय के बाद दूसरी स्टेज आती है जिसको कहा गया है रेजिस्टेंस या तो एडप्टेशन। हम उस बॉडी, उस परिस्थिति को एडप्ट करने लगते हैं और यह एडप्टेशन बहुत ही खतरनाक स्टेज है, क्योंकि समझो वर्क का प्रेशर हुआ या घर में झगड़ा होता रहा, कोई आपकी टीका करता रहा, तो कुछ समय के बाद आप उसके आदी हो जाते हैं। समझते हैं ऐसा तो चलता ही रहता है और आपको यह लगता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, परंतु फिर भी शरीर के 75 ट्रिलियन सेल्स पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इस स्टेज में जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती जाए, किसी को 6 मास के बाद, किसी को 2 साल के बाद, फिर 3rd स्टेज आती है जिसको कहा गया है एग्जॉर्शन या तो ब्रेकडाउन। जैसे गाड़ी को आप चलाते ही रहो, ठीक ना कर दो, कैसे ब्रेकडाउन होती है, ऐसे ही हमें भी ब्रेकडाउन होता है और उस स्टेज में बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। और ये स्टेजेस आपको क्यों बताए? इसलिए बताए कि अलार्म की स्टेज में ही हमें कदम उठा लेने चाहिए, तुरंत जितना क्विक करेंगे उतना तनाव कम होगा। और जो 2 सिंड्रोम इसके बताए गए, सवेरे भी मैं आपको बता रहा था, एक है सिंड्रोम जिसको कहते हैं बॉस, BOSS, उसका फुल फॉर्म है बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, कि जब कोई भी कंपनी में या तो कोई संस्था में एक व्यक्ति नया जुटता है तो उसे बहुत खुशी होती है, बहुत इंथुजियाज्म होता है, परंतु उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि जो उसकी जिम्मेवारियां उसको ठीक से कैसे निभाए। क्या नहीं पता चला? बॉस है, BOSS। तो शुरू में इंथुजियाज्म बहुत होता है परंतु हमें पता नहीं कैसे हैंडल करना है, तो इसके कारण हम कहीं गलत बातें जीवन में अपना लेते, जिसको कहते हैं कि वर्किंग जो मेथड्स है वो गलत अपनाते हैं, तो इसके कारण हम अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से निभा नहीं पाते हैं। और जब ठीक से नहीं निभा पाते हैं तो कहते हैं कि एक स्टेज आती है जिसका नाम है फ्यूल शॉर्टेज स्टेज। कल सतीश गुप्ता भी बता रहे थे कि हमारी एनर्जी लॉस होती जाती है और एनर्जी लॉस होते होते वो शॉर्टेज निर्माण होती है, और जब शॉर्टेज निर्माण होती है फिर भी हम कोई कदम नहीं उठाते हैं तो क्राइसिस हो जाता है, और क्राइसिस होने से आगे चल के कहीं हमें सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और ये इसीलिए मैंने आपको बताया, डिटेल में नहीं जाना चाहते, परंतु इसके कंपैरिजन में दूसरा एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं रॉस, ROSS। रॉस का अर्थ है रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, कि कई परिस्थितियों में, कई कंपनीज में व्यक्ति बहुत कैपेबल है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, परंतु उसके पास ऐसा काम नहीं होता है, काम बड़ा सिंपल सा होता है और वह काम बहुत ही सिंपल सा होने से भी उसे जो अंदर में इंथुजियाज्म बना रहना चाहिए, वो इंथुजियाज्म और एवरेज स्टिम्युलेशन, वो जो मोटिवेशन की स्टेज सवेरे बताई थी वो मोटिवेशन की स्टेज नहीं रहती है, तो इसलिए भी जैसे जंक लग जाता है किसी को तो उनकी चेतना को भी जंक लगता जाता है, वह भी एक स्ट्रेस का रूप ले लेता है। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। और किसे स्ट्रेस होती है उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं, इस ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन यह देखा गया है कि जिनके पास कम जानकारी है और स्किल्स नहीं है, उसे डील करने की स्किल्स नहीं है उनके पास जो जिम्मेवारियां निभाने की, तो उनको भी ज्यादा स्ट्रेस होती है। और इसके कारण स्पेशली व्हाइट कॉलर जो ऑफिसर्स कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यह कहा गया है कि जितना एजुकेशन कम उतनी स्ट्रेस ज्यादा। ऑफिसर्स में मैं कह रहा हूं, वर्कर्स में नहीं, ऑफिसर्स लेवल पर, क्योंकि एजुकेशन कम होगा तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है जॉब को डील करने के लिए, तो उसके कारण उन्हें स्ट्रेस ज्यादा होती है। तो एक तो यह बात, और दूसरी भी इंपॉर्टेंट बात है कि लैक ऑफ फैसिलिटी स्ट्रेस नहीं करती है, कि हमें रहने के लिए अच्छा घर नहीं है या तो अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, ऐसी जो बात है कि मेरे पास कार नहीं है, यह जो फैसिलिटीज न होना वो स्ट्रेस इतना नहीं करती है, परंतु उससे भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है लॉस ऑफ स्टेटस सिंबल। अभी अभी बॉम्बे में 3-4 ऐसे आत्महत्या के किस्से हुए हैं कि जहां पर अच्छे बिजनेसमैन ने बच्चों को पत्नी को सबको मार डाला और फिर खुद भी मर गए। तो इन किस्सों में यह देखा गया है कि वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास तो कई कारें थी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भी उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो मास सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उन्हें जो बिजनेस में लॉस हुआ था उसके कारण यह सोचते थे कि हमारा स्टेटस सिंबल खत्म हो गया, अभी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे इतना लॉस हो गया, और दैट लॉस ऑफ स्टेटस सिंबल क्रिएट्स मोर स्ट्रेस। तो इट इज नॉट फिजिकल थिंग्स, हम जो प्रूव करना चाहते हैं कि दिस आर मेंटल एस्पेक्ट्स विच आर कॉजिंग मोर स्ट्रेस। ये भी एक कंपनीज में देखा गया है कि एक ग्रेजुएट या तो इंजीनियर कंपनी में ज्वाइंट करता है और तब तो क्योंकि उसका एजुकेशन है तो वो जानता है कि भी मुझे क्या क्या कार्य करना चाहिए, वो कर लेता है, फिर साल दो साल में उसका प्रमोशन होता रहता है, प्रमोशन होता रहता है, और एक ऐसी स्टेज पर आता है कि जब उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि जॉब का डिमांड से वो डील कर सके, तो दिस इज द टाइम व्हेन स्ट्रेस बिगिंस। इसके कारण जैसे जैसे प्रमोशन मिले हमारे अपनी स्किल्स को भी अपनी एबिलिटीज को भी उस जॉब को डील करने के साथ बढ़ाते रहना चाहिए। अब जो आम तौर पर माने गए हैं, आम तौर पर जिन्हें जॉब स्ट्रेसर्स माना गया है, तो ये जॉब स्ट्रेसर्स कौन से है? एक तो है एक्सेसिव वर्कलोड, जब काम का दबाव ज्यादा होता है तो व्यक्ति को स्ट्रेस होती है। दूसरा है कि जो साथी है वह सहयोग नहीं देते हैं, तो जब साथी नहीं सहयोग देते तो भी तनाव होता है, कि जब सबॉर्डिनेट में जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं उसमें डिसिप्लिन नहीं होती है, वह एफिशिएंट नहीं है काम करने में, तब भी स्ट्रेस हो सकती है। जो हमारे सुपीरियर्स है उनकी आशाएं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, कभी तो क्या चाहते हैं कभी हमारे से क्या चाहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस भी स्ट्रेस कर सकती है। और जो डिसीशन मेकिंग में जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि जिनको ये नहीं लगता है कि मेरी कंपनी है या तो मेरी संस्था है मैं यह करूं, वह निर्णय करने में जब उनका सहयोग नहीं होता है तो तब उनमें यह अपनेपन की भावना नहीं आती, और अपनेपन की भावना नहीं आती है तो वो उससे अलग होते जाते और फिर निराशा का अनुभव करते हैं, स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। और कुछ आगे हम देखें कि जो रॉस में भी हमने देखा कि रस्ट आउट स्ट्रेस सिंड्रोम क्या है कि भी स्टिम्युलेशन नहीं है, मोटिवेशन इंथुजियाज्म जो होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चैलेंज के रूप में उसे ले, वह बातों की कमी होने से भी स्ट्रेस हो सकती है। फिर वातावरण भी अगर अनहेल्दी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, काम करने में बहुत गर्मी है, जो आवश्यक चीजें होनी चाहिए वह नहीं मिलती है, तो वह भी स्ट्रेस कर सकती है। आठवां जो डेडलाइंस है कि इतने दिनों में आपको काम करके देना है, जो काम करने में एक मास लगना है कहेंगे एक सप्ताह में कर दो, तो अनरियलिस्टिक डेडलाइंस में भी स्ट्रेस होता है। और पर्सनालिटी फैक्टर्स जिसकी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर जो स्किल्स नहीं है, और इंपॉर्टेंट जो ग्यारहवीं बात है कि टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं। अधिकतर तनाव कब होता है कि आपको कोई कार्य करना है और वह कार्य करने में अभी दो दिन ही बचे हैं और फिर आप भागदौड़ शुरू कर देते कि ये लाओ वो लाओ, ये तैयारी करो ऐसा करो, तो तब तनाव होता है। वास्तव में जब वह कार्यक्रम बना था तब से ही दो मास पहले से आप तैयारी करने लगते तो अंत में यह टेंशन नहीं होगा। कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति जब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बन जाती है तब टेंशन होता है, परंतु शुरू में कोई भी परिस्थिति अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं होती है। शुरू में हर परिस्थिति इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट होती है। जब वह परिस्थिति इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट है कि उसको अभी तो काफी टाइम है, दो साल पड़े हैं या दो मास पड़े हैं, तब से हम तैयारी शुरू कर दे, तब से जब भी टाइम मिले वह कार्य करे, तब हम टाइम को वेस्ट करते रहते कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और वो कार्य नहीं करते। और अंत जब आता है तब वह स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक स्केल बना है, आप अगर कोई भी किताब पढ़ेंगे तनाव से संबंधित तो उन किताबों में आपको यह स्केल मिलेगा कि जिसमें दो डॉक्टर्स थे, दो साइकेट्रिस्ट थे, डॉक्टर थॉमस एच होल्म्स और रिचर्ड एच राहे। ये दोनों डॉक्टर साइकेट्रिस्ट की जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की मेडिकल स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की मेडिकल स्कूल में ये दोनों साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि करीब 394 लोगों को बहुत सारी परिस्थितियां दी, 40-50 परिस्थितियां दी, और कहा कि भी इसमें आपको कितना टेंशन होता है आप पॉइंट लिख करके दो। सवेरे भी बताया था कि नजदीक के संबंधी की मृत्यु हो जाना, मैरिज, डिवोर्स, या तो लॉस ऑफ जॉब, वैकेशन, ऐसे बहुत सारी उन्होंने परिस्थितियां दी। और उसमें यह कहा कि आप जब घर में किसी की शादी होती है, बच्चे की या किसी की शादी है, और तब जो टेंशन आपको आता है, जो आप पर प्रेशर आता है, उसको 50 पॉइंट दे दो। और अब इसकी तुलना में आप गिनती करिए कि जो दूसरी सब परिस्थितियां है अगर उससे वो दो गुना टेंशन करती है तो 100 मार्क दो, अगर उससे हाफ टेंशन करती है तो 25 मार्क दो। ऐसे आप अपने आप इन परिस्थितियों में पॉइंट्स दीजिए। और ये सभी पेशेंटों ने अपने अपने पॉइंट दिए हर परिस्थिति में, और फिर हर परिस्थिति का एवरेज निकाला गया, और हर परिस्थिति का एवरेज निकाल करके फिर उन्होंने यह स्केल बनाया है कि जिसमें नजदीक के संबंधी की डेथ है वो 100 पॉइंट है, उसके मैरिज के 50 पॉइंट है, ऐसे डिवोर्स के एग्जैक्ट मुझे याद नहीं 80-90 कितना है स्केल है। हाँ, स्मार्ट में वो स्केल भी दिया है आपको जो मैन्युअल देंगे, ये देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं इसका राज और आगे चल के। और इस स्केल में उन्होंने यह कहा है कि पिछले 3 मास में आपके सामने जो जो परिस्थिति आई हो उसके आप नंबर दीजिए, एंड इफ इट इज मोर देन 300 तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, कहते 250 है तो भी आपको स्ट्रेस है। और एक डॉक्टर के क्लिनिक में एक बहन बैठी थी तो फ्री थी, तो उसके सामने वो स्केल आया, वो अपने मार्किंग करने लगी, तो उसने देखा कि उसके पॉइंट 450 हो गए, परंतु उसे तो लगा मुझे तो 3 मास में कोई टेंशन फील नहीं हो रहा है, मुझे जो अनुभूतियां होती है, फीलिंग्स होती है, उसमें तो कभी भी मुझे कोई भी स्ट्रेस की अनुभूति नहीं हुई। तो इससे यह लगता है कि हर परिस्थिति में क्योंकि हमारे रिएक्शंस डिफरेंट हैं, इसके कारण भल आपके कई बार 500 पॉइंट भी हो आपको कोई स्ट्रेस ना हो, और किसी के 50 पॉइंट होते हो तो भी वो अंदर में बेचारा निराश बैठा रहा होगा, उसको बहुत चिंता होगी, नर्वस होगा। अब स्ट्रेस कैसे होती, वास्तव में देखेंगे कि जब कोई भी परिस्थिति आती है तो एक और तो परिस्थिति है कि हमारे सामने कोई समस्या आ गई, वह समस्या एक और है, और दूसरे और है हम क्या अनुभूति करते हैं, कैसा हम फील करते हैं उस परिस्थिति में। परंतु हम क्या फील करते हैं उसका आधार है कि इन दोनों के बीच में हम क्या रखते हैं। जैसे कि भी अगर कोई छोटी सी चीज है, आप कॉन्वेक्स लेंस से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, और कॉन्केव लेंस से देखेंगे तो छोटी दिखाई देगी। तो ये जो बीच में हम चीज रखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बीच में जो हम रखते हैं वह क्या है वास्तव में। ये जो हम बीच में रखते हैं, देखेंगे कि भी एक और तो स्ट्रेस है और दूसरी और कहेंगे इलनेस है, या तो परिस्थिति और परसेप्शन जो मैंने कहा। परंतु बीच में जो हम रखते हैं जिसको कहा गया है पर्सनल फैक्टर्स, ये हरेक के अपने अपने विशेष फैक्टर्स है, और सच पूछो तो ये पर्सनल फैक्टर्स आर स्ट्रेसर्स, सिचुएशंस आर नॉट स्ट्रेसर्स। तो अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखें कि भी अलग अलग पर्सनल फैक्टर्स क्या है, ताकि स्ट्रेस को कम करने में और जानने में भी हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। सबसे पहली तो बात है पर्सनालिटी, जिसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, टाइप ए पर्सनालिटी कैसे अधिक बीमारियां निर्माण करती है। दूसरा पर्सनालिटी फैक्टर मैं समझता हूं वह है अहंकार,
हो गया
अच्छा, ईगो के बारे में आपको बता दिया गया, हाँ ये बताया, सिर्फ मैं रिपीट करता हूं अगर बोला है तो, क्योंकि मैंने सुना नहीं। कहते हैं ईगो लीड्स टू स्वोलन हेड एंड स्वोलन हेड लीड्स टू हेडेक, योग वो माथे को भारी करता है और उससे सरदर्द होता है। परंतु सेल्फ एस्टीम, स्वमान, स्वमान व स्वोलन हार्ट निर्माण करता है, और स्वोलन हार्ट लीड्स टू ह्यूमिलिटी, उससे स्वोलन हार्ट से नम्रता आती है। और ये भी शायद बोला होगा, नहीं बोला हो तो आप लिख लीजिए कि कैसे पता चले मुझे मेरे में ईगो है, कैसे पता चलेगा, हम तो सब ये कहते मेरे में अहंकार नहीं है, हाँ तो उसका मापदंड क्या, हाँ कोई बताएगा, मैं अच्छा, और कुछ, और कोई मापदंड जिससे मालूम पड़े कि अभी मेरे में ईगो आ गए, हाँ देखो बहुत अच्छी बात है, हाँ क्या, कंट्रोल अदर्स, अच्छा नहीं देखो एक बहुत अच्छी बात है कि तुरंत आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे में ईगो है। कहते इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, अगर कोई भी चीज चुभ, कोई भी बात आपको चुभती है कि भी मेरे को स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया गया, मेरी एक बात क्यों नहीं मानी गई, जो भी चुभता है तो समझ लो कि ये ईगो है। मैंने प्रेम भाई को पूछ लिया है इसलिए कहानी सुनाता हूं, वो उनकी फेवरेट कहानी है, परंतु कहते उन्होंने नहीं सुनाई कि अगर तनाव से मुक्त होना हो तो अहंकार से मरना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन था, वह अफ्रीका के जंगल में गया और वहां से एक तोते को ले आया, हाँ कितनों ने सुनी है, अच्छा थोड़ो लोग, थोड़े नहीं सुनी है, रिपीट करने जिसे अलग अलग विषयों में आप रिपीट कर सकते। वह तोते को ले आया और अपने पास आकर पिंजड़े में रख दिया, बहुत अच्छी तरह से उसको खाना देता रहा, उसकी संभाल करता रहा। फिर कुछ साल के बाद वह वापस अफ्रीका जा रहा था तो उसने उस तोते को पूछा कि भी मैं वापस जा रहा हूं, आपके जो वहां पर दोस्त है वो मुझे मिलेंगे, कोई आपका मैसेज हो तो दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, उनको बता देना कि भी मैं ठीक हूं, आई एम ओके। तो वहां गया और सारे दूसरे तोते इकट्ठे हो गए तो उसके बीच में उसने कहा कि वो जो आपके दोस्त को मैं ले गया था उसकी मैं बहुत अच्छी संभाल कर रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो वह सुन करके एक तोता बड़ा सीरियस हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और बेचारा मर गया, गिर गए। तो इसको भी बड़ा दुख हुआ कि अरे रे, इसका समाचार सुन के पता नहीं उसको याद आ गई और ये मर गया। तो भारी दिल को लेकर के वो वापस आया और आकर के इस तोते को सारी कहानी सुनाई कि अरे रे भाई, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने कहा तो वो तो बेचारा मर गया, सीरियस हो गया। तो ये सुन करके ये भी सीरियस हो गया, सीरियस होते होते आंख से आंसू आने लगे और मर गया। तो ये बेचारा और दुखी हो गया, ये उसकी बात को सुन के ये भी मर गया। तो उसने उसे धीरे से पिंजड़े के बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला वो उड़ गया और वहां उड़ करके कहता है कि यही संदेश वो मेरे दोस्त ने मुझे दिया था कि अगर तुझे मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। तो अहंकार से भी अगर तनाव से मुक्त होना हो तो क्या करना पड़ेगा, अहंकार से, ऐसे नहीं मरना है। परंतु बाबा जो जीते जी मरने की बात कहते हैं, अहंकार से मरना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल फैक्टर है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस निर्माण करता है वास्तव में, वह है स्वमान की कमी। क्योंकि हमारे में स्वमान की कमी है इसलिए स्ट्रेस होती है। और अच्छा स्वमान बने उसके लिए एक छोटी सी बात है, अपने आप में अलग विषय हो सकता है कि स्वमान कैसे बढ़े। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग इन्फीरियर एंड फीलिंग इन्फीरियर। भाई से कम है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जयंती भाई से इन्फीरियर है। आप में अपनी विशेषताएं हैं और कुछ योग्यताएं हैं, वो योग्यताओं के कारण आप भी विशेष है और आपको इन्फीरियर फील करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज तक अधिकतर साइकोलॉजिस्ट मानने लगे हैं कि हमारा जन्म इस दुनिया में, यहां पर जो प्रत्येक व्यक्ति है, हरेक का जन्म इस दुनिया में विशेष कार्य करने के लिए हुआ है। एक और बात है कि करोड़ों में एकाध व्यक्ति ही उस मिशन को जान पाता है और उस अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति मदर टेरेसा बन सकता है, स्वामी विवेकानंद बन सकता है, अन्ना हजारे बन सकता है। सिर्फ आवश्यकता है कि हम उस बात को पहचान लें। तो इसलिए स्वमान को हमें कभी नहीं खोना है। और क्योंकि स्वमान एक बहुत बड़ी चीज है, अगर इसको आप समझ लेंगे। और स्वमान क्यों नहीं होता है, उसका मूल कारण है कि हम समझते हैं कि भाई मेरे में ये कमियां है कि भाई मैं आलसी हूं, मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है, नहीं मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे में शिक्षा की कमी यह है, इसे हम सोचते रहते हैं, अपनी कमियों की हम गिनती करते हैं, इसलिए स्वमान कम होता है। परंतु अभी हम एक गेम करेंगे, उस गेम से पता चलेगा कि सचमुच हम सबका स्वमान अच्छा हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा शायद, तो आप साथ साथ में बैठे होंगे, अगर आप अपने पड़ोसी को जानते, आपके साथ जो भाई या बहन बैठे हैं तो अच्छा है, आप नहीं जानते तो ऐसी जगह पर चले जाओ कि जब दूसरे को आप जानते हो। हाँ, खड़े हो जाओ, एक मिनट, थक गए हैं ना। हाँ, खड़े हो जाइए, अगले आप अपनी चेयर चेंज कर दो। ऐसे व्यक्ति के पास, भाई भाइयों में, बहनों बहने में, आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है वो आपको जानता हो, पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, ढूंढ लो, जानते हैं थोड़ा बहुत भी, भले नजदीक से नहीं जानते हो, थोड़ा भी आप एक दूसरे को जानते हो। हाँ, जल्दी करिए, जितना हो सके, सभी ना भी हो, थोड़े लोग ये गेम कर सकते हैं। हाँ, क्विकली हो गए, थोड़े मिले पार्टनर, हाँ, कौन कौन पार्टनर मिले, हाथ उठाओ। मैं यह कमियां, एजुकेशन कम है, मैं नर्वस रहता हूं, ऐसा हूं, जो भी कमियां हो, और पार्टनर को नहीं दिखाओ, अपने आप ही लिखो। आपका जो पार्टनर है उसको मालूम ना हो कि आप क्या लिख रहे हैं, विशेषताएं लिखो, अपनी नहीं, अपने पार्टनर की। आपका जो पार्टनर है जिसको आप जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो, उसकी विशेषताएं लिखो, उसको दिखाओ नहीं, न तो उसकी देखो न उसे दिखाओ, कि भी उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ स्पेशलिटीज है, गुण है, और कोई बात है, तो उनकी अच्छाई जो है आपके पार्टनर की, वो आपके पार्टनर की अच्छाई लिखो, विशेषताएं लिखो, कुछ के नहीं, देखना भी नहीं है उसने क्या लिखा है। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूं, भले दे दो। हाँ, अभी क्या करना है, आप ऊपर आ जाइए, भले। हाँ, ठेरी है, अभी देखिए आप क्या होता है। हाँ, आप अपनी कमियां पढ़िए, ध्यान से सुनना,
कमियां पड़ी अपनी,
एक याद शक्ति
कम है,
खास करके जैसे टेलीफोन नंबर या एड्रेस बेड्रेस का किसी का लेने का ये जल्दी याद नहीं रहता है, बारी बारी बहुत रोता है, डायरी भी अपने साथ रखनी पड़ती है।
लेकिन आप एक
बहुत
को जानते नहीं है ना, अब यही पहचान हुई,
पहले
पहचान पहले नहीं
जानते, तो मेरी कमियां बताता हूं मैं।
नहीं लेकिन ऐसा ठीक है, हम देखते हैं, आवश्यकता इसी थी कि जिसको आप जानते हैं, जैसे इनको आप जानते हैं ना उनको, हाँ प्लीज कम, ठीक है आपने भले दूसरे को जो एक दूसरे को जानते हैं ऐसे आ जाए, दो चार साल से आप एक दूसरे को जान रहे हैं, हाँ आप आइए मैडम, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं थोड़े समय से, अच्छा प्लीज कम,
ऊपर ऊपर
आपके पार्टनर को आप जानते हैं दो चार साल से, हाँ ठीक है,
नहीं
नहीं ये तो शीज प्रिंसिपल, अच्छा आप अपनी कमियां पढ़िए, हाँ आप हाथ में ले लीजिए भले, हाँ अपनी कमियां आप पढ़िए, हाँ प्लीज यहाँ आ जाइए।
मैंने अपनी कमियां लिखी हैं, वीकनेसेस, और इनकी जानकारी तो मुझे है फिर भी है।
हाँ नहीं, क्या है वीकनेस आपकी?
गुस्सा आ जाता है,
हाँ, और
बुरा बहुत जल्दी लगता है,
लगता है, हाँ,
तीसरा दिल पे ले लेते हैं,
दिल पे ले लेते हैं, हाँ, चौथा
बच्चों को डांट कर बात करते हैं,
बच्चों को डांटते हैं, हाँ,
बोलती ज्यादा हूँ,
बोलते ज्यादा है, हाँ, और
बीती बातों को भूल नहीं पाती,
बीती बातों को भूल नहीं पाती। अभी आपने इनकी क्या विशेषताएं लिखी वो पढ़ो।
बहुत हर्षित है,
देखो बहुत हर्षित कैसे मैं नर्वस रहती हूँ
बहुत होशियार है,
बहुत होशियार,
बहुत एक्टिव है,
बहुत एक्टिव है,
कैच करने की कला बहुत अच्छी जानती है,
कैच करने की, हाँ,
हर एक में से बहुत ही विशेषताएं धारण करती है जल्दी से, कुछ भी लिखने के लिए कहे तो कोई चीज उठानी नहीं पड़ती, अंदर से सब निकल आता है, उदाहरण मुझे आज सुबह ही मिला है।
तो अभी तो एग्जैक्ट नहीं हुआ, फिर भी आपने देखा कि इन्होंने जो कमियां बताई वो उनको तो विशेषता एकाध तो दिखाई दी। अच्छी तरह से गेम करे तो जो हमें कमियां नजर आती है वो दूसरों को तो विशेषताएं नजर आती है। हाँ, आप भी बोले ऐसे ही, आप अपनी कमियां पढ़िए।
ओम शांति। मेरे में परफेक्शनिज्म पर पहुंचने की एक तो कमी है,
परफेक्शनिस्ट है, नहीं बोले टाइम कम है इसलिए हम लोग, हाँ बोले आप बैठिए, एक रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है डेढ़ घंटा है तो ये गेम अधिक टाइम औरों से भी करवाइए, इवन वास्तव में तो बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप हो तो उनको कहने का घूमने लगो, दो दो की पैर में खड़े हो जाओ और फिर लिखो आराम से।
भले ज्ञान लिया है पर कभी कभी अनुमान लगा लेते हैं, गलत अनुमान लग जाता है। वॉन्ट्स टू अचीव एवरीथिंग जितना मैक्सिमम, और थोड़ा सेल्फ एस्टीम, थोड़ी सी कमी है,
स्वमान की कमी
और
है।
पार्टनर का बताएं?
हाँ बताएं। नहीं, पार्टनर का नहीं बताओ, अभी आप इनकी विशेषताएं बताइए।
ओम शांति। शी इज वेरी एक्टिव, वेरी मिक्सिंग टाइप, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ वेरी वेल, एंड शी इज ऑलराउंडर, शी इज एवरीवेयर, शी इज एडजस्टिंग, एंड शी इज वेरी प्लीजिंग एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी।
तो देखा ना कि भी उनको जो कमियां दिखाई दी हुई सामने वाले को विशेष, हाँ अच्छा चलो टाइम होते भी बोल देते हैं, अच्छा चलो आप उनकी विशेषताएं बोलिए।
हाँ इनकी
ये तो पहले उनकी कमियां सुन लो, आपकी कमियां क्या है?
ओम शांति। आई एम वेरी लेजी, वीक मेमोरी, आई कीप हरी इन एवरी इवेंट, वीक एक्सप्रेशन, एंड वेन एवर आई एम डीपली हर्ट आई नेवर फॉरगेट।
हर्ट होते नहीं बोलते, हाँ अभी उनकी विशेषताएं बोले।
इनकी विशेषता है शी इज वेरी टॉलरेंट,
टॉलरेंट है,
शी इज सॉफ्ट स्पोकन, एंड शी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड हैप्पी मूड एज यू कैन सी नाउ ऑल्सो।
शी मोल्ड, आई फील हर्ट, और ये कह रहे हैं कि शी इज स्माइलिंग,
शी हैज ए मोल्डिंग कैपेबिलिटी टू एवरी सिचुएशन, एंड शी इज ए लिसनिंग पावर, जैसे बाबा कहते हैं ना सुनो, तो लिसनिंग की बहुत कैपेसिटी है। शी संतुष्टता इनके अंदर बहुत ज्यादा, और हां जी का पार्ट बहुत बजाती हैं।
ठीक है, थैंक यू। हाँ तो समझ गए ना, तो अभी इससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ, कि जो हमें अपनी कमियां लगती है वो औरों को तो अच्छा ही होती, उससे अपोजिट वो समझते हैं कि भैया तो इतनी अच्छी है, तो टॉलरेंट है, तो एक्टिव है, हम समझते कि मैं लेजी हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये भी आप एक्सेप्ट प्रॉपरली करेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ सकती। और एक अच्छी बात है, शायद प्रेम भाई ने भी आपको बताई होगी कि पागल व्यक्ति कहता है कि मैं गांधी जी हूं, पागल व्यक्ति सोचता है कि मैं सुनो पागल व्यक्ति सोचता है कि मैं महात्मा गांधी हूं, टेंशन वाला व्यक्ति सोचता है काश मैं महात्मा गांधी होता, और स्वस्थ व्यक्ति सोचता है कि मैं हूं आप है। ठीक है, वो बोला आपने ओके वाला नहीं बोला, बोल दिया। अच्छा, वो जो ओके वाला बोला इससे रिलेटेड ही है, यू नो आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके। पॉजिटिव बोला, अच्छा ये नेगेटिव नहीं बोला, अच्छा तो ये भी अच्छा है। चाहे तो आपको सुना भी देता हूं, कहते उस अनुसार नहीं, नेगेटिव भी भले बोलो, कहीं हम जगह पर ये बात सुनाते हैं मैं महात्मा गांधी हूं, टेंशन वाला व्यक्ति कहता है कि काश मैं महात्मा गांधी होता, परंतु स्वस्थ व्यक्ति कहता है काश मैं होता तो कितना अच्छा, और स्वस्थ व्यक्ति कहता है मैं हूं आप है, नहीं आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। वह जो बात है प्रेम भाई ने आपको पॉजिटिव रूप में सुनाई है कि यह तीन प्रकार की बातें हैं। कई लोग सोचते हैं कि यू आर ओके आई एम नॉट ओके, तो टेंशन होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरा, मैं सोचता हूं कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके, तब भी प्रॉब्लम होता है। परंतु सबसे अच्छी बात है जो बर्नी सीगल ने बताई है कि यू आर नॉट ओके आई एम ऑल्सो नॉट ओके बट दैट इज ओके। ये सब में कमियां है ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट एंड हैव गुड। हम स्वमान को सदैव कायम रखें। और एक स्ट्रेसर जो शायद सबसे बड़ा स्ट्रेसर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेसर है, वह है बदला लेने की भावना। कि कुछ भी हो, तब जो हम बदला लेने का भाव निर्माण करते हैं वह स्ट्रेसफुल है। क्षमा करने में ही शांति होगी, क्षमा करने में ही शांति होगी, यह जिंदगी में बड़ी क्रांति होगी। नहीं क्रोध में जलकर सड़ना है, क्षमा की गिनती नहीं की जाती, इसे तो मुफ्त में दी जाती। क्षमा जीना है, बदला मरना है, मुझे तो क्षमा करना है। तो जितना हो सके लोगों को माफ कर दे, और जब हम माफ कर देंगे तो हमारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह बात याद नहीं रहेगी। मैं दे दूंगा, सवेरे भी जैसे दिया था एक बहन को, किसके पास है, अच्छा ये सबको भी आप दे देना। स्ट्रेस अभी बोल दे, 7:30 तक पूरा करने के लिए प्रेम भाई ने कहा है। प्रेम, हाँ ये तो बहन को मैं दे, जिनको दिया है ताकि वो साथ में मुझे दे सकते फिर। हाँ लेकिन आप बैठेंगे फिर देरी तक बैठेंगे, तो ठीक है रिपीट करते। हाँ, क्षमा करने में ही शांति होगी, इस जिंदगी में बड़ी क्रांति होगी। नहीं क्रोध में जलकर सड़ना है, क्षमा की गिनती नहीं की जाती, इसे तो मुफ्त में दी जाती, इसे तो मुफ्त में, क्षमा की गिनती नहीं की जाती, इसे तो मुफ्त में दी जाती। क्षमा जीना है, बदला मरना है, मुझे तो क्षमा करना है। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेसर है वास्तव में, जो कहेंगे कि मुस्कान की कमी, ये भी शायद प्रेम भाई ने बताया होगा कि तनाव क्यों बढ़ रहा है, कि लोग बड़े सीरियस होके आ चल रहे हैं, जैसे जैसे प्रमोशन मिलता जाता है और तंग होते और सीरियस होते जाते। परंतु कहते हैं कि स्माइल इंप्रूव्स योर फेस वैल्यू। दूसरा, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना धनवान नहीं है कि जो स्माइल के बिगर चला सके, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना धनवान नहीं है कि जो मुस्कान के बिगर चला सके। और साथ साथ इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं है कि जो मुस्कान दान में न दे सके। हर व्यक्ति मुस्कान दान में दे सकता है। और कहते हैं कि स्माइल इज सनशाइन ऑफ सोल। आप देखेंगे कई बार इनडायरेक्टली हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते, सीधा आप आत्मा का ज्ञान देने लगेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट टू से लाइक दिस दैट स्माइल इज सनशाइन ऑफ सोल, ऐसे बहुत सारी बातें और भी आप ऐड भी कर सकते जो कुछ मेरे पास आई। क्या? अच्छा हाँ हाँ, नहीं आपको आती हो तो 9 से 10 में सुनाना, और भी लिख लेंगे। अच्छा अभी दूसरी बात, हम स्ट्रेसर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हमें तो स्माइल देनी है, परंतु कोई हमारा बॉस बड़ा अकड़ के जाता है, आपकी बड़ी बहन बस बात से देखती नहीं आपके सामने तो स्ट्रेस हो जाता है ना। तो अगर कोई ऐसा मिले तो आप टेंशन नहीं लो, आप समझो कि ये कमजोर है तो बेचारा भिखारी है, नहीं इसके पास मेंटल एनर्जी नहीं है तो क्या स्माइल देगा। नहीं, भिखारी से कुछ आप दान थोड़ी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो सोच लो कि साइकोलॉजिकली ये ड्रेन्ड आउट है। हाँ नहीं, कंटिन्यूअसली अभी एक आध बार तो ठीक है, हम बिजी होंगे तो हम लोग भी यहां से चले जाते कि नॉट। और आप देखिए, इफ यू स्माइल लोग पूछेंगे, अभी अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, कहते भी पर्सनल एग्जाम्पल ज्यादा नहीं देने चाहिए, लेकिन कई बार अभी मलेशिया के टीवी में भी मैं गया तो वो जो कंपेयर था वो आते कहते वेलकम डॉक्टर यू आर स्माइलिंग। नहीं तो लोगों को अच्छा लगता है, वे वो अनजाने हैं, इंटरव्यू देने के लिए हम गए, हम स्माइल कर रहे हैं नेचुरली, तो उन लोगों को लोग पसंद करते हैं। इसलिए बना ही लो कि भी सिर्फ कोई सीरियस घटना हो, किसकी मृत्यु हो गई है तो स्माइल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज स्माइलिंग फेस। ओके, और एक स्ट्रेसर है। हाँ जल्दी जाना होगा आपको, थोड़ा तो लेट अभी रुकना है क्योंकि आपने रिपीट कराया। और एक स्ट्रेसर है डर। डर तनाव का कारण भी है और डर तनाव भी निर्माण करता है, दोनों बातें डर में है। और एक बहुत ही स्ट्रेसफुल बात है, सिचुएशन है, वह है शादी। सिर्फ वो प्रक्रिया नहीं, डर तनाव का कारण भी है और डर तनाव भी निर्माण करता है, दोनों बातें। इट्स इफेक्ट एज वेल एज अ कॉज। और दूसरा एक तनाव है मैरिड लाइफ। एक बहुत अच्छा पत्र है, शादी के 15 साल बाद पत्नी ने पति को पत्र लिखा और पति ने पत्नी को पत्र लिखा, जिसमें पत्नी ने लिखा कि भी जब हमारी शादी हुई थी तो आप मेरा कितना ध्यान रखते थे, ऑफिस से दिन में 3 बार आप फोन करते थे, अब तो मैं बीमार होती हूं तो भी तुम फोन नहीं करते हो, कहीं हमें गाड़ी में जाना होता था तो आप स्वयं मुझे दरवाजा खोल के देते थे, मैं ठीक से बैठ गई हूं कि नहीं ये पूछते थे और फिर आप गाड़ी चलाते थे। परंतु 3 दिन पहले की ही बात है कि मुझे, मैं बैठी नहीं उससे पहले ही आपने गाड़ी चला दी, मैं गिरने ही वाली थी। इसे ये सारी बहुत लंबी लंबा पत्र है। और फिर पति ने भी पत्नी को पत्र लिखा है कि मैरिज की शुरुआत में किस प्रकार से जब मैं ऑफिस जाता था तो तुम वेलकम करने के लिए गैलरी में खड़ी हो जाती थी, जाते थे गलत हो। अच्छा मैंने गलत बोला क्या? नहीं नहीं, लेकिन नहीं होता है क्या? शादी की शुरुआत में कुछ 2-4 मास या 1 साल जब पति ऑफिस में जा रहा होता है तो पत्नी गैलरी में छोड़। हाँ नहीं नहीं, वही मैंने गलत बोला कहता हूँ, तो प्रिपेरेशन में गलत ही बोला कि बाय बाय करती है मुझे, मतलब छुट्टी देने के लिए खड़ी होती थी, जब मैं वापस आता था ऑफिस से तो तुम तैयार होकर के बैठती थी मुझे वेलकम करने के लिए, परंतु अभी तो तुम मेरा ध्यान ही नहीं रखती हो, बच्चों में इतनी उलझी रहती हो। ऐसे सारी कहानी है। तो मैरिज इज रियली स्ट्रेसफुल, उसको डील करना हमें सीखना चाहिए। एक जोक है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भगवान के पास गया, भगवान ने पूछा तुमने शादी की है या नहीं, तो उसने कहा हाँ मैंने शादी की है, तो कहा इसको स्वर्ग में भेज दो, बेचारे ने बहुत सहन किया है। और आगे सुनो, आगे भी हंसना है। उतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी पूछा तुमने शादी की है? तो कहता है हाँ भगवान, मैंने दो बार शादी की है। उसको कहा इसको नर्क में भेज दो, तुम्हारे जैसे बुद्धू के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। कि एक बार शादी करके भी समझा नहीं कि इतना टेंशन होता है। दूसरा एक, अभी इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन कोई ऑथर ने कहा है कि इस दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जिन्होंने शादी की है और जो डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा जिन्होंने शादी नहीं की है और रात दिन शादी के ख्याल करते रहते हैं। इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है बच्चों के लिए, पेरेंटल प्रेशर्स। माँ बाप जो प्रेशर डालते हैं बच्चों पर, वह एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। यहां तक कि थोड़े समय पहले ही एक लड़की ने आत्महत्या की जो कॉलेज में पढ़ रही थी, और उस नोट में उसने लिखा था कि मैं इसलिए आत्महत्या कर रही हूं क्योंकि मेरी मां चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, और मुझे पता है कि इम्पॉसिबल है, मैं 24 घंटा पढ़ू तो भी मेरे इतने परसेंटेज नहीं आ सकते कि मुझे मेडिकल में एडमिशन मिले, इसलिए अच्छा है कि मैं जीवन का अंत कर रही हूं। तो ये प्रेशर भी बहुत ही हार्मफुल है। बच्चे भी मां बाप को स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस का कारण बच्चे भी है। एक बार ये गुजराती में अच्छी तरह से कही जाती है, हिंदी में भी आप ट्रांसलेट कर लो भले, युवक व्यसन मां अने युवती फैशन मां, एनु आखू घर टेंशन मां। मतलब कि युवान वो व्यसन में, युवती फैशन में, उसका सारा घर टेंशन में। क्या फिर से करना, क्या रिपीट करना है? अच्छा, मतलब युवक व्यसन में, जो सिगरेट पीता हो, कोई व्यसन करता हो, और जो युवती है वह फैशन करती हो, तो उसका सारा घर टेंशन में रहता है। अच्छा, अभी और एक इंपॉर्टेंट बात है, टेंशन का अगर और सूक्ष्म कारणों में हम जाए तो वह सूक्ष्म कारण है गलत कॉन्शियसनेस। हमने जो कॉन्शियसनेस है वही गलत है। अभी इस पेपर को मुझे अगर ऐसे पकड़ने हैं तो क्या करना पड़ेगा, उंगलियों से उसे दबा के रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, मैं उंगलियां छोड़ दूं तो गिर जाएंगे। तो आज क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस गलत है, इसलिए आपको सब पे प्रेशर डालना पड़ता है। घर में भी देखो, ऑफिस में देखो, अपने सेंटरों पर भी देखते हैं कि भी सब कंट्रोल में रखो, जब तक कंट्रोल में नहीं रखोगे तो लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे, तो हम सदैव टेंशन में रहते हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस गलत है। और सही कॉन्शियसनेस कर दो, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे सही कर दूं तो अभी हाथ खुले है लेकिन ये पेपर गिर नहीं रहे। तो जब हम सही कॉन्शियसनेस को कर देते, भले फ्री हो जाओ, लोगों को भी फ्री छोड़ दो, सब काम होता रहेगा, परंतु आपको कोई टेंशन की बात नहीं। तो ऐसे राइट कॉन्शियसनेस चाहिए। और एक कारण है जो कहते हैं कि भाई हमें सब कुछ चाहिए, किसी से भी हमें संतुष्टि नहीं होती। एक बात कही गई इंग्लिश में, आई वॉन्ट एवरीथिंग, नथिंग सेटिस्फाइज मी। इफ दिस हैपन्स इट्स अ टाइम टू डू इंट्रोस्पेक्शन, आंतरिक जांच करने की जरूरत है कि मेरे में कुछ कमी है और उसको मैं भरूं तो यह स्थिति से मुक्ति मिल सकती है। कहा गया है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसे आसमां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसे आसमां नहीं मिलता। आगे बहुत अच्छी बात है, कभी तो पैरों तले बिछा करते हैं गलीचे, कभी तो पैरों तले बिछा करते हैं गलीचे, पर मरते वक्त कफन तक नहीं मिलता। माना कि सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, किसको ये नहीं मिल रहा, हम चाहे मुझे सब कुछ चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। और वास्तविक हमारी स्थिति हमें ऐसी बनानी चाहिए कि मेरी जो बेसिक नीड्स है, कि मुझे घर रहने के लिए आम प्रकार का घर है, पहनने को दो जोड़ी कपड़े हैं, दो टाइम खाना मिल रहा है, तो स्ट्रेस करने की कोई बात नहीं, मैं अपनी एफर्ट करता रहूं तो आगे बढ़ूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस का कारण जो आमतौर पर हम सबको जो स्ट्रेस होती है उसका कारण है कब किसी से अनबन हो जाए, कब किसी से जब झगड़ा हो जाता है तो वह वास्तव में स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए भी एक अच्छी कविता है नहीं जो भी आपको याद रहे तीन चार आप सुनाओ एक डेढ़ घंटे में तो अच्छी बात डॉक्टर कवि अच्छा। बचना इससे जिसका नाम तकरार है, बचना इससे जिसका नाम तकरार है, इसका कभी नहीं हो सकता एतबार है, इसका कभी नहीं हो सकता एतबार है। यह करती अपने को पराया, यह करती अपने को पराया, अपने जो है नजदीक के उनको पराया बना देती है। इसने कई हंसते घरों को खाया, इसने कई हंसते घरों को खाया, खाया मतलब खत्म कर दिया हंसते घरों को तकरार ने, उजाड़ा है इसने हंसते घरों को उजाड़ा। ठीक है, निकल जाना इसे चकमा देकर, अभी क्या ट्रिक इसकी विधि, निकल जाना हाँ इसे चकमा देकर, चकमा चकमा देकर धोखा देके कैसे भी छुपके से निकल जाना ताकि तकरार ना हो, बच के रहना। कहना आना अगले इतवार, निकल जाना और कहना अभी झगड़ा नहीं करना है अगले इतवार करेंगे, आना अगले इतवार। यह कहीं रूपों से आकर छलेगी, तकरार कहीं रूपों से आकर छलेगी, लगेगा इसके बिना दाल न गलेगी, जब तक झगड़ा नहीं करेंगे काम नहीं होगा, लगेगा इसके बिना दाल न गलेगी। यह पीतल है परख ना बन सुनार, पीतल है सोना नहीं है, यह पीतल है परख ना बन सुनार, बचना इससे इसका नाम है तकरार। तो लास्ट वो स्टेटमेंट है, बचना इससे इसका नाम है तकरार। परखना पीतल है परखना बन सुनार, सुनार जो ना गोल्डस्मिथ सोनार बोले, हाँ ठीक है हाँ तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब हमने पर्सनल फैक्टर्स देखे कि जो स्ट्रेस दे आर एक्चुअल स्ट्रेसर्स, बट स्टिल मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी वॉन्ट टू प्रूव इज सिचुएशन आर नॉट स्ट्रेसफुल। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी समय कम है सिर्फ मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा, उस दिन भी एक उदाहरण दिया था आपको। दो महिलाएं थी, दोनों को हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। दोनों को यह मैसेज मिला कि उनके पतियों ने डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दी है। तो जब एक महिला को यह मैसेज मिला तो उसे जोरों से हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। दूसरी महिला को जब यह मैसेज मिला तो उसे बड़ी खुशी हुई कि अभी असंतुष्ट विवाहित जीवन से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन तो एक जैसा था दोनों के लिए, परंतु उनकी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थी। ऐसे ही लंदन में दो बिजनेसमैन थे, जब भी उदाहरण देते हैं तो एक महिलाओं का भी उदाहरण दो एक पुरुषों का दो, सिर्फ महिलाओं का उदाहरण देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, या सिर्फ पुरुषों का देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दो बिजनेसमैन थे, दोनों की पत्नियां किसी के साथ भाग गई। तो एक को जब ये मैसेज मिला तो बड़ा डिप्रेस्ड हुआ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, परंतु दूसरा बिल्कुल स्वस्थ था। दूसरे दिन वो अपनी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था तो एक ट्रैफिक पुलिस ने देखा कि ये बहुत तेजी से चला रहा है, और इसने भी अपने मिरर से देखा कि ट्रैफिक पुलिस इसका फॉलो कर रही है, तो उसने और भी स्पीड बढ़ा दी। परंतु ट्रैफिक पुलिस तो स्मार्ट होती है, उसने कैसे भी उसे ओवरटेक किया और रोक लिया और फिर कहा कि देख आज इतवार है, तू सच सच कारण बता दे कि तू इतना स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहा था, तो मैं तुझे फाइन नहीं करूंगा। उसने दो सेकंड सोचा और फिर कहता है कि क्योंकि आप पूछ रहे, मैं आपको सत्य कारण ही बता देता हूं कि मेरी पत्नी ट्रैफिक पुलिस के साथ भाग गई है। जब मैंने अपने गाड़ी के मिरर में से देखा कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप उसे वापस ला रहे हैं। okay? तनाव क्या है और तनाव क्यों होता है कि नहीं समझे? थैंक यू वेरी मच।
तो अभी हम यहीं फिनिश करते हैं।